अथवा दूसरा अर्थ ये लगा सकते कि देवी देवता के पास जाते जाओ वहां नारियल फोड़ो नारियल फोड़ो मतलब जिस खोपड़े में कल्पनाएं मुख्य वृत्ति गौण वृत्ति संसार की है उस खोपड़े को फोड़ो बोले अब हे देव तुम्हारी वृत्ति भरेंगे खोपड़े में ये भाव रहता है आप लोग खोपड़ा नहीं तोड़ना खोपड़े में जो अपना मैं और मोर गुस्सा है अपने मन को जो अच्छा लगता है वो तो कीट पतंग भी करता है अमेरिका में रहो तो आपको डॉलर ही अच्छे लगेंगे और ऐसी आदत पड़ जाएगी कि इंडिया में आते समय भी अमेरिका के डॉलर ही प्यारे लगेंगे कीर्तन करते साई मोहे प्यारे लगे और पास में आ जाए कोई डॉलर वाला फिर देखो क्या करता तू तो आपने जिसको इम्पोर्टेंट दे रखा है वही प्यारा लगेगा जय श्री कृष्ण प्रभु मोहे प्यारे लगे पुजारी गा रहा है और किसी ने 10 की नोट रख दी फिर देखो कौन प्यारा लगता है सोमनाथ जी के मंदिर में पुजारी कहता है बोला ना तुम मेरे प्यारे लगते हो और फिर वो चोला नाचती तो उसको कौन प्यारा लगता है कल की कथा सुनी होगी तो आपने प्रियता कहां रखी है आपने सत्यता कहां रखी है शरीर में सत्यता रखी है संसार में सत्यता रखी है कि आत्मा में परमात्मा में सत्यता रखी जो असत्य में सत्यता रखेगा अप्रिय में प्रियता रखेगा वो धोखा खाएगा अब शरीर प्रिय है नहीं क्योंकि प्रिय है तो है क्या भागवत में लिखा है कि गोकर्ण उसके बाप को कहता है आत्मदेव को कि शरीर में जो मैं बुद्धि और शरीर के पुत्र परिवार में मेरी बुद्धि रखते आई शरीर में है क्या दो खड़ी हड्डियां कुछ आड़ी हड्डियां कुछ मांस है नसें हैं वात पित्त कफ है थूक है लीथ है टट्टी और पेशाब है इसमें प्रिय बुद्धि रख दी हे मैन ऐसा गंदगी का थैला भी अगर प्यारा लगता है तो उस चैतन्य के कारण वो वास्तव में चैतन्य परमात्मा प्यारा है तुम उसमें मुख्य वृत्ति रखो वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठ वैराग्य में राग रखो भक्तिनिष्ठ बनो मंजीरा बजाने का नाम ही भक्ति नहीं है जो परमात्मा ज्ञान से विभक्त न हो उसको भक्त बोलते तो मुख्य वृत्ति जब रखोगे तब विभक्त नहीं होगे नहीं तो विभक्त हो जाएगा मंसूर को शूली पे चढ़ाया जा रहा है मनसुख बोलता अनल हक हम नहीं मरते हम ब्रह्म है मंसूर को कहा गया था तुम केवल अनहक कह दो तो हम तुम्हें माफ कर सकते बोले हम झूठ नहीं बोलते अनहक मतलब खुदा है अनल हक माना मैं ही खुद खुदा हूं बोले तुमको जीवन दान दे सकते हैं लेकिन अनल हक की बजाय अनहक कह दो बोले जीवन दान क्या जीवन तो मैं हूं ही हूं दान क्या तुम दोगे मारोगे तुम मरने वाले शरीर को मारोगे मेरे को कौन मार सकता बोले हम तुमसे प्रेम करते इसलिए तुमको सलाह देते हैं अनल हक की बजाय अनहक ही कह दो बोले वो झूठ हम नहीं बोल सकते दोनों वृत्ति कुट कुट के घुस गई थी अपने असली आत्म स्वभाव में हम ब्रह्मास्मि तो वास्तव में आप नित्य हो एक करोड़ एक मिलियन एक ट्रिलियन डॉलर भी आपके लिए बहुत आपका अपमान है आप इतने महान हो आपने अपनी महानता नहीं जानी इसलिए आप इम्प्रेस हो रहे देखा अपने आप को मेरा दिल दीवाना हो गया ना छेड़ो मुझे यारों में खुद पे मस्ताना हो गया स्वर्ग में मस्ताना हुआ कोई धन में मस्ताना हुआ कोई पत्नी के शरीर में कोई पति के शरीर में कोई किसी में लेकिन उन सब मस्तानों को रोना पड़ता है वही अमर हो जाता है जो खुद पे मस्ताना होता है आत्मा पे मस्ताना और उसी के द्वारा दूसरे लोगों का सच्चा लाभ होता है जिसने सच्चा सुख लिया वही दूसरों का सच्चा हित कर सकता है सच्चा सुख तो आत्मा में है सच्चा सुख उस चैतन्य में है पढ़े लिखे डिग्रियां मिल गई तभी भी लोग दुखी रहते कुर्सियां मिल गई फिर भी लोग परेशान रहते धन मिल गया फिर भी लोग खोखले रहते भीतर से बढ़िया लेडी मिल गई फिर भी देखो अशांत रहते डाइवोर्स देते बढ़िया से बढ़िया लेडे मिल गए फिर भी दुखी होते लेकिन जिसकी मुख्य वृत्ति आत्मा में आ गई उसको शूली पे चढ़ते तभी भी सुखी रहते सुकरात को जहर दिया जाता तभी भी दुखी नहीं होते मीरा को विक्रम राणा के द्वारा और उदा नरंद के द्वारा सताया जाता, फिर भी मीरा दुखी नहीं होती, क्योंकि मीरा की मुख्य वृत्ति भगवत भाव में थी। तो मन में ताकत है मुख्य वृत्ति और गौण वृत्ति बनाने की, और आप में ताकत है कहां लगाने की, और सत्संग में ताकत है कि आपको रास्ता दिखाने की, सहयोग करने की। इसलिए शास्त्र ने कहा होगा, 100 काम छोड़कर भोजन कर ले, 1000 काम छोड़कर स्नान कर ले, 1,00,000 काम छोड़कर दान पुण्य कर ले, फिर मन बेईमान हो जाएगा। और 1,00,00,000 काम छोड़ के हरि का ज्ञान हरि का ध्यान भर ले, इसी से कल्याण होगा। लेकिन वो मुख्य वृत्ति होगी तब 1,00,00,000 काम छोड़कर हरि के ध्यान में बैठेंगे, लेकिन मुख्यतः संसार में होगी तो कथा चालू कथा में भी जरा सा टेलीफोन आएगा तो भागेंगे, हाँ जी हाँ हूँ, तुम्हारो ऑर्डर बुक करू छू, अत्यारे सत्संग चाले छे, कई वांधो नहीं, तमे लखाओ। बापू क्या छे? कि अमदावाद में छे। बापू ना दर्शन माटे मारे जेवु छे, पण एवु छे ने कि मारे एक प्रॉब्लम छे। तो बापू में मुख्य वृत्ति नहीं है, संसार का टट्टू चलाने में मुख्य वृत्ति है, और प्रॉब्लम के लिए आया। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जिसने अपना दिल एक ईश्वर में लगाया वे निश्चिंत रहे, बाकी तुम्हारा धन होने से आदमी निश्चिंत होता है, ये बात मेरे गले नहीं उतरती। सत्ता मिलने से आदमी निश्चिंत होता है, ये बात मैं नहीं मानता हूं। सौंदर्य मिलने से आदमी निश्चिंत होता है, ये बात मैं नहीं स्वीकार करता। बढ़िया पत्नी होने से आदमी निश्चिंत होता है, बढ़िया पति मिलने से निश्चिंत होता है, ये बात मैं टेम्पररी मानता हूँ। बेवकूफी से कोई मान ले मैं निश्चिंत हूँ। मौत सिर पे नाच रहे निश्चिंत कैसे? जहाँ मौत नहीं पहुँचती वहां वृत्ति पहुंचे तभी निश्चिंत हुआ, भांजे नहीं तो काय का निश्चिंत। और वृत्ति पहुंचाने में तुम स्वतंत्र हो, फिर काय कहूं, मरने की जगह पे वृत्ति रखो। जहां आग लगती हो वहां जाके बैठना, धधकती आग में, या जब आग लगने की तैयारी वहां बैठना। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि आसमान की बिजली से अगर से लोगों के कार्य होते हो तो घर में दिया क्यों जलाए, वो तो देखने भर को है। ऐसे ही संसार का ये जो प्रकाश है, यहाँ वाही वाही है, वो तो आसमान की बिजली जैसी है। विषधर की फन की छाया में चूहा कितनी देर खैर मनाएगा, सांप के फन की छाया में चूहा कितनी देर निश्चिंत रहेगा। ऐसा ही है संसार तो। अजगर का तकिया करके आप कितनी देर चैन से सोओगे, अथवा शेर की गुफा में कितनी देर आप आराम से नींद कर सकते, कितनी देर आराम से रह सकते, अथवा बुद्धिमान मनुष्य वमन की वे कीमती पदार्थों के आगे कितनी देर महत्व बुद्धि से ठहरेगा। हाय मैंने रसगुल्ले खाए, इतनी महंगी महंगी चीज खाई, उल्टी हो गई, हाय हाय इन पदार्थों के बिना भी कैसे जीना, तेरे बिना भी कैसे जीना, ऐसा करके कितनी देर अपनी उल्टी के आगे बैठेगा। तो उल्टी को उल्टी जान लिया तो उठ खड़ा हो जाएगा, ऐसे संसार को संसार जान लिया तो वृत्ति वहां से उठकर खड़ी हो जाएगी, भगवान की तरफ चलेगी। कृष्ण का इंद्रिय अर्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के भोग विषय में विवेक करके वैराग्य लाओ। अनहंकार एवच, किसी बात का अहंकार मत करो, तुमसे इन चीजों में बड़े बड़े आए और मर गए। हम बड़े धनाढ्य हैं तो तुमसे बड़े बड़े धनाढ्य भी आखिर मर गए, खाक हो गए और प्रेत होके भटके। मुसोलिन की संपत्ति के आगे तुम्हारी संपत्ति क्या होती? मुसोलिन की कथा सुनाई थी ना तुमको, पता है? कुबेर के धन के आगे तुम्हारा धन क्या होता है, इंद्र के भोग के आगे तुम्हारा भोग क्या होता है। ऐसे भी आखिर मरे और कीड़े हुए, तो तुम कब तक अमर हो जाओगे इन चीजों को पाके? ठीक है, इन चीजों का उपयोग करो, लेकिन आनंद और मुख्य वृत्ति अपने ईश्वर में लगाओ। वधारे जवाई नहीं कथा में, कदाच बापू तने साधक नो बना दे, बेटा हूं तने हारी नौकरी अपाव छू, तो बनाओ गुलाम, बनाओ छोरों को नौकर, गुलामी करते करते मरने दो, बापू तो उनको ब्रह्म बनाना चाहते थे, तुम गुलाम बनाया था, तो गुलाम तो गुलाम ही बनाता है। हूँ तो रमेश सेठ छू, सेठ सनो जे तो गुलाम छे, सेठ तारी उपाधि एक पाटी लगाड़ी दे। सेठ तो वो है जो सच्चे सेठ से मिलने के रास्ते छलांग मारे, बाकी तो सब गुलाम। एक सगाचंद सेठ था, उसकी दुकान थी करियाने की, बड़ी अच्छी। पौराणिक काल की कथा है। देव ऋषि नारद घूमते घामते गर्मी के दिन में एक बाजार में प्याऊ लगा था पीपल के पेड़ के नीचे, वहां नारद जी ने पानी पिया। और तुम्बरू नाम का उनका शिष्य भी था सेवा, दोनों ने पानी पिया, घड़ी भर आराम किया। इतने में कसाई बकरे का टोला लेकर जा रहा था, उसमें से एक मोटा बकरा करियाने की दुकान पे, सगाचंद की सेठ की दुकान पे चढ़ गया। कुछ ही वर्ष हुए थे सगाचंद सेठ मर गया था और वो उसका बेटा संभालता था वो दुकान। वो बकरा उस दुकान पे चढ़ गया, छोरा किसी पास में बातचीत करने गया था, किसी दुकानदार से गप लगा, बकरा चढ़ गया दुकान पे, मठ खाए। छोरा ने देखा बकरा ने मठ खाया, छोरा दौड़ा, जवान छोरा था, बकरे का पकड़ा कान धड़ाक धड़ाक दो ठों से ठोक दिए, तो जो मग उसके गले तक गए थे वो भी वापस दो, 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 दो। कान पकड़ के कसाई को दिया कि देख ये तेरा पाप मेरे मठ खा गया, अभी जब इसका झटका करने जाए तो मुंडी मेरे घर भेजना, समझे नुकसान हुआ है। उसने कहा सेठ जी माफ भेज देंगे। नारद जी ने ध्यान लगा के देखा और ठाका मार के हंसे। तुम्बरू ने पूछा गुरुजी क्या बात है, उस बकरे को ठोसा लगा, आपने ध्यान करके देखा और आपको खुशी, संत तो किसी के दुख में तो दुख होता है लेकिन आप जरूर हंसे तो कोई रहस्य आपने देखा होगा। नारद ने कहा हाँ रहस्य देखा इसीलिए हंसी आए। बोले गुरुजी क्या, बोले छोड़ो बेटा जाने, बोले गुरुजी कृपा करें, बोले जिसका बोर्ड लगाने सगाचंद सेठ वो खुद ही था। दुकान तो जीवन पर संभाली मुख्य वृत्ति से कौन, लेकिन अपने को नहीं संभाला, बकरा होकर आया, इतने सारे बकरे गए कोई ऐसा नहीं चढ़ा और एक चढ़ गया अपना दुकान समझकर। तो मैंने सोचा क्या बात है, तो पता चला कि ये भूतपूर्व सगाचंद सेठ था ये बकरा। अरे भूतपूर्व सेठ जी रमेश सेठ पाछा आवे ने घर में पैसे तो खबर पड़े छोकरा उन पौत्र के उदेश, एक बार जेन पछी रूप बीजू लेने आओ के वा पहवा दे छे तमने। एक बार मृत्यु का झटका लगा फिर आप दूसरा जन्म लेके उस घर में घुसो देखो क्या हाल होता है। अरे इसी शरीर से जिन हड्डियों को घिस डाला वही हड्डियां मरने के बाद तुम्हारे घर में नहीं रखी जाएगी, बाहर रखो दूर, यह है संसार। क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज, छोड़ी छोड़ी सब जात है देह गेह धन राज, हाड बड़ा हरि भजन कर द्रव्य बड़ा कछु दे, अकल बड़ी उपकार कर। उपकार कर तो वृत्ति मुख्य जगह पे लगा और उपकार क्या, ईश्वर के नाते ही दान पुण्य सुन कर उसी से वृत्ति लगाने के लिए करना है। ऐसा नहीं कि तुम सत्कर्म करोगे अच्छे जगह पे काम कुछ दोगे तभी चलेगा, नहीं तो संस्था मर जाएगी या गरीब मर जाएंगे। नहीं नहीं, जिसने पैदा की सृष्टि और चीजें वो तो चलाता रहता है, तुमको तो मौका मिलता है सेवा करने का, इस बहाने अपनी वृत्ति ईश्वर में लगे। नारायण हरि नारायण हरि बोलो नारायण हरि नारायण। कई लोग तो इधर अपनी वृत्ति तो नहीं लगा सकते, किसी संत के फोर्स से भी संत उनकी वृत्ति लगवाते तो थोड़ी देर हरी ही ओम करते फिर देखते कोई देखता तो नहीं, अंदर से कुछ उभरता तो फिर रोक देते तो वृत्ति साइड में रहती हरी ही ओम। इधर उधर क्या देखते, ईश्वर में लग जाओ हरी ही ओम। वृत्ति नींद में लग गई, वृत्ति पलायनता में लग गई, ईश्वर में नहीं लग रही। अभी संसार में नहीं है, ईश्वर में भी नहीं है, अभी पलायनता में गई, आलस्य में, निद्रा में, तंद्रा में। अपना साखी आप है, निज मन माही विचार, नारायण जो खोट है उसको तुरंत निकाल। दूसरा मन कहता है कि आज भाई भाई बीज के बाद तीज है, कुछ आपको ऐसा सत्संग सुनाऊं जो सत्य में आपका रुचि हो जाए, सत्य का संग हो जाए। तीसरा मन कहता है कि नहाने जाऊं, चौथा मन कहता है कि घूमने जाऊं, और तुम ही बताओ मैं क्या करूं। अरे तुम ही ने बताया कि मैं क्या करूं, वही हो रहा है, जैसा तुम्हारा संकल्प था वही हो रहा है। जय राम जी की। लेकिन याद रखना, ये तुम्हारा संकल्प नहीं, तुम्हारे मन का संकल्प है। तुम्हारा मन अगर दुष्ट होता तो तुम्हारा संकल्प नहीं फलता। तुम्हारा मन इस समय सत्संग में पवित्रता में, इसीलिए संकल्प फलता है। शुभ संकल्प फलते हैं, दुष्ट संकल्प जल्दी नहीं फलते। अगर दुष्ट संकल्प फलने लग जाए तो दुष्ट लोग सत्संग करने ही नहीं देवे अपने को। सर्प बिच्छुओं के भी संकल्प फलेंगे तो हमको तो काट खाएंगे वो। जेब कतरों के भी सब संकल्प फलें तो हमको तो हमारी जेब में पैसे ही नहीं रहने देंगे। शुभ संकल्पों में फलने की विशेष योग्यता, अशुभ संकल्प बहुत कम हिस्से में फलते। इसलिए शुभ संकल्प, एक शुभ संकल्प वाला महापुरुष हजारों लाखों आदमी को आनंदित कर सकता है, लेकिन एक गुंडा अपने लाखों गुंडों को आनंदित कर सकता है क्या? सीधी बात है। तो शुभ संकल्प, महाराज आजकल जमाना खराब है, ईमानदारी का कोई नहीं, आजकल ईमानों की दुनिया है। अरे कोई बेवकूफी मत कर। ईमानदार व्यक्ति तो दूसरे ईमानदार की कदर करता है, लेकिन जो महा बेईमान है वो भी अपना मुनि में ईमानदार चाहता है। महा बेईमान है वो भी अपना अकाउंटेंट ईमानदार चाहता है। महा बेईमान है नेता, फिर भी वो अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है कि मेरे से वफादार रहे। ईमानदार की दुनिया कैसे नहीं हुई? ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है, लेकिन बेईमान भी तो ईमानदार चाहता है। क्या करे जमान मां बड़ा खराब, ईमानदारी का कोई नहीं, ये नहीं, ये ऐसी बात नहीं। गांधी जी अगर बेईमानी करते तो वकीलात में सफल हो जाते, फिर भी कई वकील पैदा हो गए, मर गए ऐसे मर जाते। लेकिन ईमानदारी में प्रीति रखी, मुख्य वृत्ति ईश्वर में लगाई, ईश्वर की प्रसन्नता में, तो वकीलात में भले थोड़ी देर के लिए विफल हुए लेकिन बदला तो बहुत बढ़िया मिला। ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी है। ईमानदारी से अपने को अपनी हल्की वृत्ति का बचाव करते हैं। अरे इधर उधर किसी के स्कूटर पर आवारा जैसा बैठ, मैं नहीं बैठता, ऐसा नहीं बैठता। अपनी हल्की वृत्तियां, अपनी गलती को जो सपोर्ट करते उनको फिर मुसीबतें सह के गलती निकालनी पड़ती है, और जो अपनी गलती को जल्दी से स्वीकार कर लेते उनको आसानी से गलती निकलती। मुख्य वृत्ति अगर ईश्वर में है तो आपसे वही काम होगा जिससे गुरु और भगवान प्रसन्न हो। मुख्य वृत्ति जब सुविधा में या आवारा टाइप में है तो आपसे वही होगा कि आपका अंतरात्मा या गुरु नाराज, उसकी ये पहचान है। हमारी मुख्य वृत्ति ईश्वर में है कि नहीं ये कैसे जाने? जाने जीव तब जागा, हरिपद रुचि विषय विलास विरागा। विषय विलास में वैराग्य हो और भगवत रस में, भगवत ध्यान में, भगवत चिंतन में, भगवत आनंद में आनंद आने लगे तो समझो मुख्य वृत्ति उधर चल रही। फिर उसी वृत्ति के चलने वालों का संग करे संतों का तो मजबूत होगी, और संसारियों का संग करेंगे तो वो कमजोर होगी और वो फिर चढ़ बैठेगी, क्योंकि पुरानी आदत। विवेकानंद बोलते थे कि तुम्हारा घाव जब तक ठीक से रुझा नहीं, भरा नहीं और ठीक से रुझा नहीं, तब तक पाटा पाटी ड्रेसिंग बंद मत करना, और खुजलाहट लगे तो खुजलाना मत, नाखून मत लगाना, जहर चढ़ जाएगा। घा रुझाय न रुझा, मंडिया खंजवाड़वा, घा रुंझाय न रुझा, पाटा पाटी छोड़ी दी, एटले उथल खादी, गुमड़ाए उथल खादी। गुमड़ो उथल खादे तो वही बे महीना बीमार पड़ो, पर आ मन उथल खाए तो तो वही 84 लाख जन्मों सुधी माना गर्भ में टंगाई रहो। लियो आप एक जरा काट लो कहीं आना घरे गया नहीं भावना छे जरा चा पी दी जरा एना गोटा खाई लीधा जरा आम थे तो तुम्हारी साधना नष्ट किया तो फिर जब वही रंग लग जाएगा। हम तो रामकृष्ण को बड़ा स्नेह करते हैं। केशव चंद्र सेन बड़ा निकट का शिष्य था, रामकृष्ण को अपने घर ले जा रहा था। बहुत दिनों की प्रार्थना के बाद रामकृष्ण सहमत हुए। घोड़ा गाड़ी में रामकृष्ण बैठे, गर्मी का समय था। रामकृष्ण बोलते केशव प्यास लगी पानी, बोले गुरुजी अभी घर आया, टांगा था धीरे धीरे चला, फिर प्यास ने जोर पकड़ा, केशव प्यास लगी गुरुजी अभी घर आया, फिर चाबुक मारा घोड़े, घोड़ा गाड़ी भागी। रामकृष्ण कहते केशव बहुत प्यास लगी, बोले गुरुजी वो दिख रहा है बस आया। घर पहुंचे, नौकर को बोला पानी लाओ गुरुजी के लिए, नौकर जग भर के मांझ के पानी ले आया। रामकृष्ण ने नौकर की आंखों के तरफ देखा, पानी के तरफ देखा, मुंह मोड़ दिया, दोबारा जग भर के लाया मांझ मूंझ के। फिर से रामकृष्ण ने दोबारा देखा, मुंह फेर लिया, तीसरी बार भर के आया। रामकृष्ण उठ के टांगे में बैठ गए, बोले मेरे को दक्षिणेश्वर छोड़ के आओ जल्दी। घर पे गुरु आए, कुछ खाए नहीं, कुछ लिए नहीं, हम कुछ दे न पाए तो प्यासे गुरु को कम से कम पानी से तो तृप्त करना चाहिए। और वो प्यासे प्यासे आए पानी मांग रहे, फिर भी हमारे घर का पानी नहीं पिया तो शिष्य को कितना दुख हुआ होगा। लेकिन मौका पाके गुरु से बात करना होता है। जब मौका मिला तो रामकृष्ण से पूछा कि गुरुदेव हमारे घर उस दिन पधारे, आपने जल जल मांगा नहीं दिया। बोले नौकर को निकालना मत, उसको डांटना मत, पानी तो साफ था लेकिन उसको उसके जो परमाणु थे वो साफ नहीं थे, और चरित्र उसके साफ नहीं थे, तो उसकी आंखों से जो वेव्स गिर रहे थे पानी में वो मेरे भक्ति ध्यान में विघ्न करते। मैं प्यासा मरना कबूल करता हूँ लेकिन भगवान से वृत्ति हटाना कबूल नहीं करता। હું તરસ્યો મરી જવા કબૂલ કરું છું, પણ મારું મન ઈશ્વરથી ખસી જાય એવું કોઈ જળ મારે જોઈએ નહીં, એવી કોઈ વસ્તુ નહીં। બ્રહ્મ જ્ઞાન હો ગયા ફિર તો નાલિકા જલ ભી ઉસકે લિયે ગંગા જલ હો જાતા હૈ। થોડો તો સાધક અવસ્થા મેં તો સાવધાન રહેના પડતા હૈ। સાક્ષાત્કાર હો ગયા રામકૃષ્ણ યા વિવેકાનંદ જો ખાતે પીતે રહેતે વો અલગ બાત થમણ મહર્ષિ, લેકિન જબ હમ સાધક હૈ, हम जब साधना करते थे ना तो किसी के हाथ का नहीं खाते थे, कोई बनाए वो भी नहीं। अभी तो सेवक बनाते हम खा लेते, नहीं अपने हाथ से बनाते, भोजन का सामान साथ में रखते, लकड़ियां भी धोके जलाएंगे, अपवित्र लकड़ी न जले इस भाव के थे हम। सचमुच में धोते नहीं थे लेकिन कहने का तात्पर्य लकड़ी भी धोके जलाए कि लकड़ी भी कहीं अपवित्र न जले। हे समय शुद्धि का विचार, कहीं हमारी साधना में हमारे विचारों में किसी का प्रभाव ना आ जाए, ऐसा रक्षा करना पड़ता है अपनी, नहीं तो फिसल जाते खान की दुकानों में, ना जाने कहां कहां फिसल जाते। एक बार ये वृत्ति में आ गया कि देखो और लोग घर बार छोड़ के साधु बनते तो आश्रम का खाते दान का लेके खाते, अपन तो घर बार छोड़ा सेवा आश्रम की करते लेकिन अपने घर का खाते। फिर सोचा कि अभी अपने घर का गुस्सा है वृत्ति में तो भगवान में कब लगेगी, तो जो था घर का वो उठा के भंडारा भंडारा कर दिया और करमंडल उठा के भीख मांगने गए हम नारायण हरि। तो एक माई थी कहीं बेचारी देर से बना रही थी, उसके घर का दिखा दूं हम, तो हमने जाके वहां खड़ा किया, तो माई से सिंधी थी, उसको पता नहीं कि हम सिंधी लैंग्वेज जानते हैं हम सिंधी, तो माई ने सिंधी में खरी खोटी दो चार सुना ली। मुआ गाहड़ो गिट्टे जेड़ो मोर हेडो जो जो धो जवान पैरों फुलको भी तो तम तय में अच्छी बी रहे टुम्बी माई नारायण हल हल माल। भाई ने समझा होगा नहीं जानते हुए बात सुना दिया, अपने मन को बोला देख मजा बापू कैसा आता है, दुख होता है कि सुख होता है देख जरा बापू, जय श्री कृष्ण। क्या क्या वृत्तियों में घुसा हो उसको निकालने के लिए आप ही गुरु बनना पड़ता है, गुरु की कृपा लेके। तुम लोग जब आराम फरमा रहे थे, सोफा पे सो रहे थे, यहाँ तक कि कीट पतंग और आकाश के परिंदे भी अपने घोंसलों में आराम फरमा रहे थे, उन रातियों में हम जगे थे और रोए थे कि तू कैसे मिलेगा, तुझ में मन कैसे लगे। अब एक बार मन को चस्का आ गया, मुख्यवृत्ति लग गए, फिर तो आराम है, फिर तो मौज है। ये सारी दुनिया संसारी आदमी काम छोड़कर संसार में भटकते हैं और ज्ञानी काम निपटा के संसार में सैर करता है। नारायण हरि। असली काम मुख्यवृत्ति लगाना छोड़ के संसार में मजदूरी करते वो संसारी, लेकिन मुख्य काम करके फिर संसार में जो काम करते हैं वो उनके लिए सैर हो जाता है। ज्ञानी के लिए स्वनिर्मित विनोद और संसारियों के लिए बड़ा कल्याण। ज्ञानी के लिए सहज में जो है वो संसारियों के लिए बड़ा ज्ञान, बड़ा उद्धारक, बड़ा कल्याणकारी। मुख्य वृत्ति लगाना थोड़ा पुरुषार्थ है, बाकी लग गई तो फिर सब वहीं से मिल जाता है। पंडित पोथियां रट रट के भी बोले तो इतना मजा नहीं आता, ज्ञानी उठा के गप्पा सप्पा में शुरू कर दे तब भी चल पड़ती गाड़ी पर ले दमा दे। जिसकी मुख्य वृत्ति ईश्वर में लगी उसके लिए सुख अपना घर का खजाना है, और जिसकी ईश्वर में वृत्ति नहीं लगती उसको सुख के लिए क्लबों में जाना पड़ता है, शराब की शरण जाना पड़ता है, वाइन की शरण जाना पड़ता है, डिस्को की शरण जाना पड़ता है, स्मोकिंग के शरण जाना पड़ता है, न जाने कितनी कितनी शरण लेता है फिर भी उसको वो सुख नहीं मिलता। जिसकी मुख्य वृत्ति ईश्वर में लगी है उसका स्वास्थ्य तो भीतर से ही आनंददायी प्रजाता, दूसरा आदमी कैप्सूलों से, इंजेक्शनों से और ऑपरेशनों से स्वास्थ्य ढूंढता फिरता है। जिसकी मुख्य वृत्ति ईश्वर में लगी उसका ज्ञान और आनंद भीतर से आता है, विद्या भीतर से निकलती है। आज इसकी ईश्वर में मुख्य वृत्ति नहीं, वो किताबों से रट रट के विद्या का सर्टिफिकेट ले लेके घूमता है फिर भी बरकत नहीं। अगर ईश्वर में प्रीति नहीं हुई तो स्वास्थ्य के लिए इंजेक्शन कैप्सूल की शरण लेनी पड़ी, ईश्वर में मुख्य वृत्ति नहीं हुई तो स्वास्थ्य सुख के लिए विषय विकारों, क्लबों, शराब, कबाब और न जाने क्या क्या चीजों की शरण लेनी पड़ी। जिसकी मुख्य वृत्ति ईश्वर में नहीं लगी उसको विद्या के लिए किताबों की शरण लेनी पड़ती है, पोथे तोथे दिमाग में भरने पड़ते फिर भी वो रस नहीं आता। जिसकी मुख्य वृत्ति ईश्वर में नहीं लगी उसको सुख के लिए मजदूरी करनी पड़ती है, ज्ञान के लिए, स्वास्थ्य के लिए, यश के लिए, न जाने क्या क्या कपट और कावे दावे करने पड़ते और कहाँ कहाँ सुकड़ना पड़ता है, लेकिन जिसकी मुख्य वृत्ति ईश्वर में लग गई उसके लिए तो सब चीजें मुफ्त में तैयार, यश भी मुफ्त में, आपको कुछ कावा दावा नहीं करना पड़ेगा, सुख भी मुफ्त में, सेव भी मुफ्त में, सब आके तैयार, मौज पड़े तो खाए नहीं तो दे दे ले। नारायण हरि। स्वर्ग की अप्सराएं भी मुफ्त में आए फिर जाने को लग गए, स्वर्ग के देवता भी आप कई लोग पूजते फिर भी देवता वहां नहीं जाते, और ऐसे पुरुष के आगे तो बिना बुलाए देवता हाजिर। सारी रात अंबाजी गर्भ घूमे छे मारी बहुचर मानो गर्भ रे, ओ गाते रहे। और लालजी महाराज सुबह उठ के दातन करते तो देखा कि नौ देवियों के बीच एक मुख्य देवी है आकाश में, ये क्या है, देखते देखते वो देवियां आई, बाकी की देवी अदृश्य हो गई और मुख्य देवी प्रकट। तो दातन मुंह में महाराज ने बोला माँ आखी रात लोगों बूमो पाड़े से त्यों जवन अं कोने बुलाया था तुमने। तो बिन बुलाया जाते ऐसे तो देवी देवता ज्ञानी के परम भक्तों के पास, जिसकी मुख्य वृत्ति परमात्मा में लग गई वो परम भक्त हो गया क्या। अगर ना हो जन्ने हा, अगर ना हो जन्ने हा, ही संत सचारा न धरती हो जेहा, न सिज चंद तारा, छड़े शहर बस्तियों रहन झंग झड़ में हो, छड़े शहर बस्तियों रहन झंग झड़ में, सही सूर सक्त्यों कढ़न प्याकशाल, अगर ना हुजन, अगर ना हुजन,
योगी प्यारा अगर ना हो जने ये दानी दुल्हारा न धरती हो जेहा न सिज चंड तार उनन जी दया सा हलन प्या गिरस्ती हो उनन जी दया सा हलन प्या गिरस्ती हले जग सारो हले पैसी रस्ती हले जग सारो हले पैसी रस्ती अगर ना हो जाना उस संत सचारा अगर ना हो जाना प्रभु जा प्यारा न धरती हो जेहा न सिज चंद छदे शहर बस्तियों रहन झंग झड़ में